स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 12 अगस्त दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कश्मीर के हालात के लिए सीमा पार चरमपंथ को ठहराया जिम्मेदार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह बोले,
सभी ने वन वॉइस और राइट इंटेंट के साथ अपनी बात रखी है।
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को एक बार फिर अमेरिका के एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए रोका गया। सुनिएगा क्यूबा के राष्ट्रपति रहे फिडेल कास्त्रो के भारत से जुड़ाव पर रेहान फजल की विवेचना।
घंटे भर के बाद आप आए, मैं समझा था ये मुझे शायद सिगार पेश करें, मैंने वो के सिगार पीना उसने छोड़ दिया था और वो ब्रांडी एक अपने लिए एक मेरे लिए, वो गोया एक रैपोर कायम करे फिर गुफ्तगू हो, वो तरीका अलग था।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत को जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया था कि वारदात को अंजाम देने वाले बावरिया गिरोह के सरगना सलीम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति प्रशासन का जिम्मा संभालने वाले अपने सबसे पुराने और सबसे नज़दीकी सहयोगी सर्गेई इवानोव को पद से हटा दिया है। कुछ खबरों में राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से कहा गया है कि सर्गेई इवानोव ने खुद ये पद छोड़ा है और अब वे पर्यावरण मामलों के दूत के तौर पर काम करेंगे। इवानोव के सहायक रहे एंटन वाइनो को राष्ट्रपति प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। व्लादिमीर पुतिन, शुक्रिया आपके भरोसे के लिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आपका सहयोग करना और आपके निर्देशों का पालन कराना है। इनमें वो आदेश भी शामिल हैं जो आपने मई 2012 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के समय जारी किए थे। राष्ट्रपति पुतिन के नए भरोसेमंद अधिकारी एंटन वाइनो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के शहर एलेप्पो में विद्रोहियों ने सरकारी बलों को मिलने वाली रसद काटने के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं। हमलों की वजह से सरकारी रसद की पहली खेप को एलेप्पो शहर पहुंचने से पहले अपना रास्ता भी बदलना पड़ा है। एलेप्पो शहर में कई इलाकों में सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई होने की खबरें मिल रही हैं। थाईलैंड में पुलिस ने देश में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे तोड़फोड़ की मंशा जताई है और कहा है कि इन धमाकों का चरमपंथ से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने संकेत दिया है कि इन धमाकों के पीछे विपक्षी राजनीतिक दलों का हाथ हो सकता है। इन धमाकों में 4 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने थाईलैंड जाने वाले अपने नागरिकों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अमेरिका में होने वाले 2 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में होने वाले ये मुकाबले 27 और 28 अगस्त को अमेरिका में खेले जाएंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर विचार के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए सीमा पार चरमपंथ जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत के आधार पर समस्या का हल ढूंढा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर समस्या के हल के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
जानकारों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि कश्मीर के 4 स्टेक होल्डर्स हैं और अगर बातचीत होगी तो सभी स्टेक होल्डर के साथ होगी। उनके अनुसार ये स्टेक होल्डर हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोग। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद तुरंत 12:30 बजे से संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बैठक संपन्न हुई है। जो बैठक हुई है उसके संबंध में मैं कह सकता हूं, सभी ने वन वॉइस और राइट इंटेंट के साथ अपनी बात रखी है।
बैठक में यह तय हुआ कि अभी कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, इसलिए वहां संसदीय दल भेजने का सही समय नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
प्रधानमंत्री जी ने भी उस मीटिंग को संबोधित किया है। उनकी स्पीच के जो कुछ सैलियंट पॉइंट्स हैं वह मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर सर्वपंथ समभाव की सदियों पुरानी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध एवं मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिसको मुख्यतः पड़ोसी देश से प्रोत्साहन मिलता है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि बैठक में सभी पार्टियों में एकता नजर आई,
एक साथ रहेंगे और एक स्वर में बोलेंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश का मामला है। नहीं, डेलीगेशन भेजने की अभी कोई बात नहीं हुई है और सरकार ने सभी की राय सुनी और एक विश्वास दिया कि हम इस मामले में राष्ट्रहित में इसको हम निपटेंगे।
बैठक के शुरू में ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक छोटा सा भाषण दिया, उसके बाद गुलाम नबी आजाद बोले। उन्होंने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात की। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से शुरू की, फिर विस्तार से हमने अपनी पार्टी के तरफ से जो हमारा दृष्टिकोण है उसको रखा।
सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सुझाव दिया कि पहले कश्मीर में विश्वास को बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएं।
सवाल यह है कि शायद सरकार इस प्रयास में है कि वहां पर कुछ ग्राउंड वर्क करके मतलब उस हिसाब से इसके बारे में आगे को सोचेंगे, लेकिन हाल में जो करना है हमने स्पष्ट रूप से जो हमारी बात है जो कही, जिसको ना माना गया ना ठुकराया गया, अब क्या करेगी सरकार वो बताए कि पहले से बातचीत के दौरान शुरू करें।
2008 में कश्मीर के लिए 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे जिसकी रिपोर्ट पर अमल नहीं हो सका है। इसके बाद 2010 में हुई हिंसा के बाद 3 सदस्य वाली एक समिति बनी, लेकिन समिति की रिपोर्ट पर अब तक अमल नहीं हो सका है। पिछले महीने एक चरमपंथी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद से कश्मीर में शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है, सामान्य जीवन ठप पड़ा है। अब तक 56 कश्मीरी प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, छर्रों से घायल होने वाले दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। प्रदर्शनकारी कहते हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक, लेकिन इस बैठक का हासिल क्या रहा, यही समझने के लिए मैंने बात की MM अंसारी से, जो कश्मीर समस्या के अध्ययन के लिए बने पैनल के सदस्य थे।
इसके आउटकम को बहुत ही मैं निराशाजनक मैं मानता हूं, बहुत ही इसको डिसअपॉइंटिंग मानता हूं, इसलिए कि इसमें कोई ऐसी चीज अभी बात नहीं हुई है या निकल कर नहीं आई है जिससे जो मौजूदा अपराइजिंग है, जो अभी वहाँ पे जो हालत है कर्फ्यू की और स्टोन पेल्टिंग की, जिसको टैकल करने में कोई भी किसी भी तरह की कोई सहूलत हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के आउटकम जो है वो निराशाजनक है।
प्रधानमंत्री ने कहा, जो राजनाथ सिंह जी ने बाहर आकर जो बात कही प्रधानमंत्री जी के हवाले से, कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो जिम्मेदार है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे?
नहीं, ये बात तो बहुत हद तक सही है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस हैं, लेकिन आप ये बताइए कि दुनिया में जहां भी किसी कहीं भी इस तरह की अपराइजिंग हुई है, कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती रही हैं। अगर कश्मीर में भी अगर इस तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो वो हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे लोग हैं वो आखिर उनको हम क्यों नहीं सुकून से और पीसफुली रख सके जिसकी वजह से वो किसी के बरगलावे में आते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक कश्मीर के मामले में जो एक्सटर्नल की जो बात हो रही है, तो ये हमें समझना चाहिए कि एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जो ये 70 सालों से अनरिजॉल्व्ड है, और इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक प्रॉक्सी वार के तौर पे ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करता है, और इसी तरह से पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को ब्लेम करता है कि वहाँ के पीओके में या बलूचिस्तान में इस तरह की इंटरफेरेंसेज होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कंट्रीज ने किसी न किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलती रही हैं, और जो रियल इशू हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के या पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के, वो टैकल नहीं हो रहा है, वो अब तक हल नहीं हुआ, और उसके लिए जो मुनासिब पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है।
प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि सभी पक्षों से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, लेकिन अलगाववादियों को शामिल किए बिना ये बातचीत किस तरह से फ्रूटफुल होगी?
अब ये कुछ हमारी बात नहीं आती। एक तो हम कहते हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स, तो ऑल स्टेक होल्डर्स में तो वो जाहिर है कि स्टेक होल्डर हो ही जाते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस पूरे मसले को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इसलिए कि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं और वो एक मेजर स्टेक होल्डर निकल करके आए। तो वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, जो ऑफ स्ट्रीम पार्टीज हैं, हमें मैं समझता हूँ कि सभी से बात करनी चाहिए। और जब हम वहाँ इंटरलोकेशन अपना कर रहे थे तो हमने किसी भी ग्रुप को हमने छोड़ा नहीं था, चाहे वो सिविल हो, चाहे आर्मी के लोग हों, पुलिस के लोग हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तमाम लोगों से बात की थी। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का एक मसला ऐसा है कि वहाँ पे हम किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं हम वो कर सकते कि हम इनसे बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे।
ये थे एम एम अंसारी, जो कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के मौजूदा तनावपूर्ण हालात को सामान्य बनाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत प्रशासित कश्मीर में बीते 35 दिन से तनाव जारी है। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतना होगा। लेकिन कैसे कैसे बनेगी बात, क्या सोचते हैं आप? जाहिर कीजिए अपनी राय बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए रोका गया। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें अमेरिका में एयरपोर्ट पर रोका गया हो। इस घटना से परेशान हुए शाहरुख खान ने ट्विटर पर अपनी खींच जाहिर की और सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक भड़क उठे। क्या था पूरा मामला, जानने के लिए मैंने बात की वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से।
शाहरुख खान के साथ पहले भी अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर इस तरह की घटना हो चुकी है। कल शाम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर उन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया और उनकी अलग से जांच पड़ताल की गई। शाहरुख खान ने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं दुनिया के हालात देखते हुए मैं सुरक्षा जरूरतों को समझता हूँ, लेकिन हर बार रोका जाना दुखदायी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने भी खासा गुस्सा जताया, और फिर अमेरिका की जो उप विदेश मंत्री है निशा बिस्वाल, उन्होंने ट्वीट पर ही खेद जताते हुए कहा कि अमेरिकी राजनयिकों को भी कई बार इमिग्रेशन के अधिकारी रोक देते हैं और अलग से पूछताछ होती है उनकी। और उसके बाद भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भी ट्वीट करके खेद जताते हुए कहा कि ऐसा दोबारा ना हो, इस पर काम हो रहा है, और आपका काम यानी शाहरुख खान का काम लाखों लोगों को प्रेरणा देता है।
ब्रजेश, ऐसा पहले भी हो चुका है शाहरुख खान के साथ, बार बार ऐसी घटना क्यों सामने आ रही है?
देखिए, इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस बार, लेकिन अंदाजा ये है कि शाहरुख खान का कोई हमनाम अमरीकी नो फ्लाई लिस्ट पर है, और वो जब भी अमरीका आते हैं तो कंप्यूटर पर वो नाम पहुंच जाता है और वो इसलिए उन्हें रोका जाता है। अंदाजा है कि यहाँ पर 80,000 लोग अमेरिका की नो फ्लाई लिस्ट पर हैं, और कई नाम तो ऐसे भी हैं जो गलती से डल गए हैं। एक बार तो विवाद उठा था कि दिवंगत जो सेनेटर थे टेड केनेडी, उनका नाम भी किसी ने डाल दिया था क्योंकि वो जॉर्ज बुश के खिलाफ थे। तो ये लिस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं 11 सितंबर के हमले के बाद के अमेरिका की जो हकीकत है वो दिखाता है, और FBI ने पहले कुछ सालों तक तो ये स्वीकार भी नहीं किया था कि ऐसी कोई लिस्ट है, लेकिन ये अक्सर विवादों में घिरा रहा है। अक्सर कोई ना कोई इस तरह का वाकया होता है जो सुर्खियों में आ जाता है और पता चलता है कि वो नाम गलती से उसमें लिस्ट में डाला गया था।
ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और अब रियो ओलंपिक की खबरें। रियो में आज भारत के लिए क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं रियो दे जनेरो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नौरिस प्रीतम के पास। नौरिस, तीरंदाज अतानुदास रिकर्व वर्ग में बाहर हो गए हैं, आज और किन खेलों पर नजर रहेगी?
आलम यह है कि जिस खेल पर नजर रखते हैं उसी में से लोग बाहर हो जाते हैं। अभी उसके साथ साथ एथलेटिक्स में भी बाहर हो गए हैं 800 मीटर में, और जो टाइम जॉनसन ने जो भागा है निकाला है वो श्रीराम सिंह ने 40 साल पहले मॉन्ट्रियल में निकाला था, तो इसलिए तो न्यूज अच्छी नहीं है खास। लेकिन शाम को जो सबसे अहम मुकाबला हम लोगों के लिए है भारतीय दृष्टि से वो टेनिस में सानिया और रोहन बोपन्ना का, लेकिन उनकी जो क्वार्टर फाइनल है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो एंडी मरे और हैदर वॉटसन के साथ खेल रहे हैं। हैदर वॉटसन विंबलडन की डबल्स की चैंपियन है इस वक्त, तो एक बहुत तगड़ा मुकाबला, बहुत डिफिकल्ट मुकाबला होगा, वही सबसे अहम मुकाबला है आज शाम को भारतीय नजर से।
आप नजर बनाए रखिए, आपके पास अगले कार्यक्रम में दोबारा हम आएंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में हमें ये बताएं कि खेल मंत्री विजय गोयल का विवाद क्या था, ओलंपिक आयोजन समिति ने उन्हें क्यों चेतावनी दी?
देखिए वो हर जगह जा रहे हैं और थोड़ा एक्साइटेड हैं, शायद उनको रूल्स भी नहीं पता है, वो फील्ड ऑफ प्ले जिसको FOP बोलते हैं उसमें घुस गए, डोपिंग जगह हर कई जगह पे गए और प्लेयर से मिलने लगे, सेल्फी ले रहे हैं। होता क्या है कि डोपिंग वगैरह का मामला होता है तो लोगों को प्लेयर से पास जर्नलिस्ट तक भी नहीं जा सकते और वो चले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो सारा पैटरसन जो नेशनल ओलंपिक कमिटीज की रिलेशंस मैनेजर है उन्होंने चिट्ठी लिख के भारतीय चैंपियन मिशन को ये ताकीद की है कि उनको ऐसा ना करें, अगर बार बार वो कहा जा रहा है और अगर अब करेंगे तो उनका जो एक्रेडिटेशन कार्ड है वो वापस ले लिया जाएगा।
जी नॉरिस प्रीतम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
फिडेल कास्ट्रो हालांकि अब क्यूबा के राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन अब भी उनकी गिनती दुनिया के असाधारण राजनेताओं में होती है। फिडेल कास्ट्रो का भारत से बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी भारतीय प्रधानमंत्री न सिर्फ उनसे मिले हैं बल्कि उन्होंने उनको नज़दीक से जाना भी है। फिडेल कास्ट्रो की 90वीं वर्षगांठ पर रेहान फजल नज़र दौड़ा रहे हैं उनके भारत से जुड़ाव पर।
Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos?
ये आवाज है क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट जगत के मशहूर नेता फिडेल कास्ट्रो की, जिनको अगर वर्तमान युग के लिविंग लेजेंड के रूप में पुकारा जाए तो उनके धुर विरोधियों को भी शायद ही कोई आपत्ति हो। लहीम शहीम कद, बेतरतीब दाढ़ी, चौड़ा माथा और जैतूनी हरी सैनिक यूनिफॉर्म, ये छवि है फिडेल कास्ट्रो की। कौन भूल सकता है वो दृश्य जब फिडेल ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान विज्ञान भवन के मंच पर इंदिरा गांधी को सरेआम गले लगाया था। जाने माने पत्रकार सईद नकवी, जिन्हें कास्ट्रो को इंटरव्यू करने का मौका भी मिला था, कहते हैं
इंदिरा गांधी को उसने छाती से लगा लिया था, वो लजाई शर्माई दुल्हन बन गई बिल्कुल, उनके समझ में नहीं आवे क्या करें। नेहरू की बेटी थी लिहाजा ये नेहरू उस तरीके से देखता था। देखिए उसने बड़ा काम किया, लोग भूल जाते हैं। अब आप अभी तक एक जंग चल रही है वेस्टर्न सहारा में, पोलिसारियो और मोरक्को की, वेस्टर्न सहारा किसका है? आप हर जगह आपका दखल, आप जनाब वहाँ उनको सहारा दिए हुए हैं, पैलेस्टिनियंस किसी हद तक यतीम हो गए उसकी मदद के बगैर, हर जगह एक नेशनल लिबरेशन का मूड था, इथियोपिया, एंगोला, जहाँ जहाँ की फिर काउंटर रेवोल्यूशन रेगन के जमाने में आया, वहाँ वहाँ आप मौजूद थे जनाब फिडेल कास्ट्रो साहब।
कास्ट्रो के भारत प्रेम की कहानी शुरू हुई थी 1960 में, जब सत्ता संभालने के बाद कास्ट्रो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें जानकर धक्का लगा कि वहां का कोई होटल उन्हें अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड से मुलाकात कर कहा कि आप मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के रहने का इंतजाम करें, वरना मैं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रांगण में तंबू डालकर वहां रहने लगूंगा। गनीमत यह रही कि अगले दिन न्यूयॉर्क का टेरेसा होटल उन्हें अपने यहां रखने को तैयार हो गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखा,
जब मैं कास्ट्रो से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको पता है जब मैं न्यूयॉर्क के उस होटल में रुका तो सबसे पहले मुझसे मिलने कौन आया? महान जवाहरलाल नेहरू। मेरी उम्र उस समय 34 साल थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था मेरे पास, नेहरू ने मेरा हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से मुझमें गजब का आत्मविश्वास जगा। मैं ताउम्र नेहरू के उस एहसान को नहीं भूल सकता।
उस मुलाकात के बाद भारत के लिए उनके मन में जो सम्मान और स्नेह पैदा हुआ, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। 1983 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की शुरुआत में ही फलस्तीनी नेता यासिर अराफात इस बात पर नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को बोलने का मौका दिया गया। नटवर सिंह उस सम्मेलन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बीबीसी को बताया।
सातवां नॉर्वे समिट मार्च 1983 में हुआ था और उसके चेयरमैन थे फिदेल कास्त्रो सुबह के सेशन तक, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी थी। तो सुबह का सेशन खत्म हो जाने के बाद जो मेरे डिप्टी थे सत्ती लामा, वो आए के साहब बहुत बड़ी आफत पड़ गई है कि यासर अराफात बहुत नाराज हैं और अभी अपने जहाज में जाने को दिए हैं वापस। मैंने फिर इंदिरा जी को टेलीफोन किया, मैंने साहब ये बड़ी आफत हो रही है, आप यहाँ आ जाइए और मैं कास्त्रो साहब को भी ले आइए विज्ञान भवन। उन्होंने ये कहा कि साहब सुबह के सेशन में मुझे जॉर्डन के किंग के बाद बोलने को कहा और मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे उनके पहले बोलना चाहिए था। कास्त्रो साहब आए और उन्होंने टेलीफोन किया यासर अराफात को, कहा आ जाइए यहाँ विज्ञान भवन में। तो वो आ गए तो कास्त्रो साहब ने पूछा कि बताओ इंदिरा गांधी तुम्हारी दोस्त है कि नहीं है। उन्होंने कहा मिस्टर कास्त्रो क्या कह रहे हैं आप, मेरी दोस्त नहीं बड़ी बहन है। तो उन्होंने कहा फिर बड़ी बहन है तो यू बिहेव लाइक ए यंगर ब्रदर एंड कम टू द आफ्टरनून सेशन। तो आ गए।
सईद नकवी जब 1990 में फिडेल कास्त्रो का इंटरव्यू लेने हवाना पहुंचे तो वहाँ के अफसरों ने उनको काफी इंतजार कराया।
तो इंटरव्यू मिला और हम गए और वहाँ पे जनाब एक सस्पेंस हमेशा रहता है, वो बुला के बिठा लेते हैं, फिर अब आप इस कमरे से ना निकलिएगा, बाहर ना जाइएगा, टेलीफोन किसी वक्त आ सकता है। तो आप कमरे में बैठे होंगे, सस्पेंस हो ना हो, फिर साहब आया कि आप तैयार हो जाएंगे रात को। कब? मैं समझो भाई शरीफ आदमी 6 बजे शाम के, 7 बजे, 8 बजे, नहीं साहब 10 बजे रात को उनकी गाड़ी आई, उनको लेके गई, एक साइड रूम में हम बैठे, घंटे भर के बाद आ पाए वही अपने फटीग्स में। मैं समझा साहब ये मुझे शायद सिगार पेश करे, मालूम हो कि सिगार पीना उसने छोड़ दिया था, और वो ब्रांडी एक अपने लिए एक मेरे लिए, वो गोया एक रैपोर कायम करे, फिर गुफ्तगु हो, वो तरीका अलग था, कल्चर अलग था। तो 1.5 घंटे इसी में लग गए कि दुनिया पे यहाँ से वहां तक उसने मुझे ताल लिया, मैंने उसे नाप लिया, अब हम जाके बैठे।
अच्छा ये बताएं, इस तरह की गुफ्तगु में जो इंटरप्रेटर रहता है वो एक
साहब जादूगरनी थी एक, हाँ आपको ये एहसास नहीं होता था कि इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वो बोला गालिब का मिसरा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, यानी वो बोला उसे फट से, और यानी हमारे सवाल का जवाब जो कि बिल्कुल अजूबा रहा होगा, लेकिन इतना क्विक फायर औरत थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, और बिल्कुल इंस्टेंटेनियस इंटरप्रिटेशन विदाउट ए फ्लॉ। तो ऐसे ही गुफ्तगु हो रही, बिल्कुल अक्सर अंग्रेजी के लफ्ज वो समझ जाता है, उसकी उसको जरूरत नहीं होती थी, लेकिन वरना जवाब में बिल्कुल स्पेनिश का एक रुख जो कि क्यूबन एक डायलेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी कई तरीके से बोली जाती है, वैसे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश कई लहजों में बोली जाती है। तो साहब बड़े मज़े की बातें, और फिर बाहर एक छोटे से लॉन है, वहाँ जाके उसने सीट वीट का बंदोबस्त कर रखा था उसके मीडिया वालों ने। और साहब बात आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 मिनट और 20 मिनट, अब आप फंसे तो फंसे, फिर 3-4 घंटे से कम गुफ्तगू नहीं होती। वो
फिडेल के साथ कुछ इसी तरह का तजुर्बा कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु का हुआ। वो जब 1993 में क्यूबा की यात्रा पर गए थे तो उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी उनके साथ थे।
उस समय रात को अचानक 11 बजे हम ज्योति बाबू और हम खाना वाना खा के सोने की तैयारी में थे, अचानक मैसेज आया कि कमांडेंट वुड लाइक टू मीट यू। तो ज्योति बाबू ने कहा कि इस समय क्या मिलने हैं, मतलब रात को 11 बजे? कहता नहीं नहीं, वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं दफ्तर में, आपको आना ही है। तो ज्योति बाबू फिर बंद गले सूट वूट दोनों पहन के हम दोनों गए, और शायद 11:30 बजे पहुँचे, और तकरीबन 1:30-2 बजे तक बातचीत चली। वो तो रात भर भी काम करते थे फिडेल, और तब पता चला कि किस तरीके से डिटेल के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए, मतलब नेता का मतलब कि एक्चुअली वो डिटेल्स के ऊपर जो जितनी समझदारी होनी चाहिए, वो तब नज़र आया मेरे को फिडेल कास्त्रो के अंदर, किस गहराई के साथ किसी सवाल के अंदर वो जाते हैं, तो अचानक ज्योति बाबू से पूछने लगे कि अब स्टील का प्रोडक्शन कितना है इंडिया में, अब कोल कितने टन आ रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब ज्योति बाबू को ये पूरे स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब वो नेचुरली अब किसी को भी सडनली अचानक आप पूछो तो पता नहीं होगी। तब फिदेल ने पलट के मेरे तरफ देख के कहा कि भाई ये तो बुजुर्ग है, ये तो बड़े नेता है, आप जैसे नौजवानों को तो ये सब याद होनी चाहिए। तो तब से लेकर बाद में फिर एक बार मिला फिदेल कॉमरेड फिदेल कास्ट्रो से, लेकिन तब से लेकर वो स्टैटिस्टिकल हैंडबुक में जेब में लेके जाता हूँ, मतलब क्यों जब जाते हैं ताकि पता नहीं कब कौन सी आंकड़ा वो पूछ ले।
अगले दिन जब ज्योति बसु और येचुरी भारत वापस आने के लिए हवाना हवाई अड्डे पहुंचे तो उन्हें VIP लाउंज में बैठाया गया। अचानक लाउंज को खाली करा लिया गया। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।
अब सडनली देखे कि फिदेल साहब पैदल आ गए वहाँ पे हमें विदाई करने के लिए। अब वो खुद आएंगे और हमें याद है मेरे कंधे पे एक बैग लटका हुआ था और फिदेल अपने यूनिफॉर्म में थे और यूनिफॉर्म के साथ साथ हर बार एक गन होता उनके पास। तो बोला बैग के अंदर क्या है तुम्हारा, तो बोला क्या है मतलब किताबें कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो ऐसे डे नहीं यहाँ पे तो तुम आ गए लेकिन मेरे सामने कोई बैग लेके नहीं आता, पता नहीं उसके अंदर क्या होता है क्योंकि इतने बार मेरे को मारने की कोशिश की CIA ने, तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है। तो बोला आपके पास तो पिस्तौल है, तो ये पिस्तौल तो आप चला सकते हो अगर कोई आपके पास हमला करने आता। तब उन्होंने बोला देखो इसकी राज समझ लो आप, यस हम समाजवादी देश पिस्तौल रखे हैं हम ताकि हमारे दुश्मनों को डराने के लिए, लेकिन इस पिस्तौल में कोई गोली होता नहीं है कभी 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 वो चलेगा नहीं, कोई गलती से किसी निर्दोष का जान ना जाए, लेकिन वो डराने के लिए रखता हूँ मैं। मतलब ये उन्होंने अपनी एक छोटी सी सीक्रेट हमें अभी तब बताई थी।
केंद्र में मंत्री और दो राज्यों की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा को भी कई बार फिडेल कास्ट्रो से मिलने का मौका मिला था। अल्वा ने BBC को एक दिलचस्प कहानी बताई जब फिडेल ने उनसे पूछा कि आपका वजन कितना है।
वो बैंक्वेट था उनके पैलेस में, तो बात करते करते मेरी वजन पूछी। मैंने बोला हिंदुस्तान में तो हमारी एक कहावत होती है कि नेवर रिवील व्हाट द साड़ी कैन हाइड, तो हमारी वजन ये वो कोई किसी को पता नहीं लगता है क्योंकि साड़ी से कुछ पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, और मुझे ऐसे पकड़ के उन्होंने उठाया एक मिनट और बोला कि अभी मैं आपकी वजन जानती हूँ। मैं तो शॉक में थी और उसके बाद दो बार भी मिले, उनसे बहुत बातचीत हुई और ही वॉज रियली अ हीरो। मुझे तो कहूँ तो पूरे देशों में गई हूँ, उनके जैसे एक डायनामिक लीडर को मैंने कभी नहीं देखा।
एक दूसरी मुलाकात में फिडेल कास्ट्रो ने मार्गरेट अल्वा से पूछा कि अगर स्पेनिश लोग क्यूबा में न उतर कर भारत में उतरे होते तो इतिहास क्या होता। अल्वा ने तपाक से जवाब दिया, फिडेल कास्ट्रो एक भारतीय होते।
वो तो निकले थे भारत पहुंचने के लिए पर गलती से वेस्ट इंडीज में पहुंच गए क्यूबा में। तो मुझे कहा कि इतिहास देखो क्या होती अगर वो इंडिया में पहुंचते। तो मैंने बोला साहब क्या होता, फिडेल कास्ट्रो तो इंडियन होता। तो इतने हंसे, टेबल को ऐसे दबा के बोले कि दैट इज गुड, आई वुड हैव बीन सो हैप्पी, मुझे तो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत प्यार है और मैं बहुत खुश होता अगर मैं हिंदुस्तानी होता।
फिडेल कास्ट्रो देस्ट ओरिएंटे अ बातिस्ता कॉम्बटियो, फिडेल कास्ट्रो देस्ट ओरिएंटे अ बातिस्ता कॉम्बटियो, या ला पैट्रिया लिबर्टो कॉन सु सोम्ब्रास डिग्नामेंटे।
Que viva Fidel, que viva Fidel.
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
फिदेल कास्ट्रो पर रेहान फजल की इस विवेचना के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी CBI करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए CBI जांच का आदेश दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति प्रशासन का जिम्मा संभालने वाले अपने सबसे पुराने और सबसे नज़दीकी सहयोगी सर्गेई इवानोव को पद से हटा दिया है। सीरिया के शहर एलेप्पो में विद्रोहियों ने सरकारी बलों से मिलने वाली रसद काटने के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं। थाईलैंड में पुलिस ने देश में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे तोड़फोड़ की मंशा जताई है और कहा है कि इन धमाकों का चरम पंथ से कोई संबंध नहीं है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।